नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। भक्तिवेदांत स्वामी नेत्र चिकित्सालय के 6 साल स्थायी रूप से सेवा के आज गांठ वर्ष के उपलक्ष में यहाँ आप सब ब्रजवासी जो सहयोगी इस कार्य की सफलता में हैं उत्साह के भाव से पधारे हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। और डॉक्टर साहब डॉक्टर वागले जी और उनका सारा यहाँ का जो अस्पताल का कार्य संभाल रहे हैं उनका बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमको ये सेवा का अवसर दिया। श्री प्रभुपाद जी एक बार कृष्ण श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभेचरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी अमेरिका में न्यूयॉर्क में अपने कमरे में बैठे थे और उनके साथ उनके पाश्चात्य देश के शिष्य बैठे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप क्या समझते हैं कि मैं अमेरिका में हूं? नहीं, मैं तो ब्रज में हूं। स्वामी जी आप तो यहां अभी अमेरिका में हैं महाराज। अमेरिका में मैं शरीर है लेकिन मेरी चेतना वृंदावन में है, मैं वृंदावन में हूं, ब्रज में हूं, मैं अमेरिका में नहीं हूं। और फिर श्री प्रभुपाद जी कहने लगे, ब्रज में रहना ब्रज की चेतना है, ब्रज की भावना है। बोला ब्रज की भावना क्या है? बोला ब्रज की भावना है कि हम सब श्री कृष्ण को राधा कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, इसके अलावा और कोई ब्रज का उद्देश्य नहीं है। तो ब्रज की जो भावना है, ब्रज की जो चेतना है, उसमें चाहे गाय हो, चाहे हिरण हो, चाहे ग्वालिन हो, चाहे नंद बाबा यशोदा हो, चाहे श्रीमती राधा रानी हो, सबका एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण को आनंद कैसे दिया जाए, कृष्ण को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक संदेश श्री प्रभुपाद ने दिया, कहीं भी रहो लेकिन कृष्ण सेवा का भाव हो तो आप ब्रज में, आपकी चेतना ब्रज में टिकी हुई है। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि यहां बरसाना ब्रजभानु महाराज यहां विराजते, उनका महल, ये किशोरी जी का महल है, करुणामयी दयामयी राधे करुणा भरिते, करुणामयी करुणा भरिते, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं दया और करुणा से भरी हुई ये किशोरी जी का सदा बरसते कृपा बरस रही है। उस कृपा के आकांक्षी इच्छुक बंबई में रहने वाले ये डॉक्टर, जितने हमारे डॉक्टर गण थे वो श्रील प्रभुपाद के प्रेरणा से और फिर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की प्रेरणा से 2002 से ब्रज क्षेत्र से कई ऐसे महात्मा यहाँ रहते हैं, कहते हैं हमको ब्रज की सीमा से बाहर जाना नहीं है, नहीं देखें तो नहीं देखें, नहीं चल सकें तो नहीं चल सकें, लेकिन ब्रज की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। ये बहुत से लोग संकल्प करके बैठते हैं, यहाँ आ जाते हैं तो ये संकल्प ले लेते हैं कि ब्रज से बाहर नहीं जाना है। तो उन लोगों की सेवा करने के भाव से कहा कि कृष्ण की सेवा कैसे कर सकेंगे, तो श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि राजा को प्रसन्न करना हो तो आप क्या दे के राजा को प्रसन्न कर सकते हो, राजा तो राज का मालिक है, उसके पास कौन सी चीज की कमी है। लेकिन राजा का कोई छोटा सा बालक हो, उसका सा कोई छोटा सेवक हो, उसको तो छोटी सी चीज देके भी खुश किया जा सकता है, एक टॉफी देके कि बच्चे को खुश किया जा सकता है, खिलौना देके भी खुश किया जा सकता है। तो भगवान की प्रसन्नता भगवान के भक्तों की सेवा करने से प्राप्त होती है। तो यहां जो भक्त संकल्प लेके भगवान की सेवा में बैठे हैं, उनकी सेवा करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं उसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कहता है मैं कृष्ण के भक्तों का भक्त हूं, गोपी क्या है, गोपी भरत हो पद कमलयोर दास 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 अनुदास, मैं तो गोपीनाथ, मैं तो राधानाथ के चरणों के चरणों के चरणों के दासों का मैं दास हूं, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। तो इस उद्देश्य से कि यहाँ ब्रज 84 कोष के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं पूरा ब्रह्म, वैसे तो भारतवर्ष ही महान है और भारतवर्ष इतना छोटा सीमा में नहीं है जितना आजकल आपको भारत का जो ये मैप दिखता है, मानचित्र दिखता है, इतना छोटा भारत नहीं है। वेदों में भारतवर्ष महाराज भरत के नाम से, पीछे ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत के नाम से भारतवर्ष, पूरी धरती जो खारे पानी के समुद्र से घिरी है उसका नाम है भारतवर्ष। बाद में लोगों ने इस धरती के टुकड़े करके अपने राज बनाए और राजा बनने का मूर्खता किया, नहीं तो ये पृथ्वी तो विष्णु पत्नी है, ये तो भगवान की पत्नी है, हमारी माता है, ये संसार में ऐसे बाद में वही भारतवर्ष एक क्षत्र राजा हुआ करते थे। तो ये भारतवर्ष महान है, इसके लिए तो देवता भारतवर्ष में जन्म के लिए लालायत होते हैं। बोला क्या बात भारतवर्ष में मुख्य है, बोला हरि कथा होती है, हरि कथा की गंगा बहती है, वैकुंठ कथा सुधा प्रगा, और वहां उसके किनारे साधु बैठ के कीर्तन करते हैं, वहां भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, वहां भगवान की जन्माष्टमी राधाष्टमी का उत्सव होता है। अरे देवता कहते हैं कि इंद्र जैसा लोक को छोड़ के हमको अगर ये चीजें नहीं हो तो इंद्र लोक भी नहीं चाहिए, जहां कथा नहीं, जहां कीर्तन नहीं, जहाँ भगवान के भक्तों का संग नहीं, वो चाहे देवताओं का लोग हो तो मुझे नहीं चाहिए। तो भारतवर्ष तो महान है, लेकिन भारतवर्ष में मथुरा मंडल महान है, ये 84 कोस महान है, और मथुरा मंडल में मथुरा महान है क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ, तो ये भगवान के प्रकट्य की भूमि है। और मथुरा मंडल में वृंदावन महान है क्योंकि वहां भगवान ने बाल लीलाएं की है ब्रज में, और उससे महान है गोवर्धन जिसको भगवान ने अपने कर कमलों के ऊपर धारण किया, और उससे भी अधिक आनंद है जो राधा के संबंधित राधा कुंड है, और ये तो राधा रानी का महल है, तो ये तो पूरे विश्व का केंद्र है। भगवान कृष्ण का नाम है सबको आकर्षण करने वाला, लेकिन भगवान को जो आकर्षण करे, भगवान को जो अपनी ओर आकर्षण करती है वो है श्री जी किशोरी राधा रानी। भगवान का नाम मदन मोहन, तो राधा रानी का नाम मदन मोहन मोहिनी, तो मदन मोहन को भी मोहित कर लेती है। एक बार कलकत्ता में अपना कृष्ण भावना अमृत संघ का केंद्र किसी बहुत बड़े जमींदार की हवेली में किराए पे लिया हुआ था। जो जमींदार था वो चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रेमी भक्त था, और श्रील प्रभुपाद जी के एक सन्यासी से उनसे बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि देखो दूध होता है चीनी होती है, दोनों को मिलाते हैं फिर रसगुल्ला बनता है, तो रसगुल्ला तो दूध और चीनी दोनों से मीठा होता है, अच्छा होता है। और फिर कहते हैं ऐसे राधा और कृष्ण हैं, ये दोनों मिलके चैतन्य महाप्रभु बन गए तो ये रसगुल्ला मीठा हो गया, वो ये सिद्धांत बता रहे थे। लेकिन ये हमारे वो अच्युतानंद स्वामी थोड़े से विचलित हो गए कि इसका अर्थ क्या है, पूछा जाके श्रील प्रभुपाद जी से। श्रील प्रभुपाद जी जहाँ हम रह रहे हैं ये कह रहा है दूध और चीनी अच्छे हैं, लेकिन दोनों को मिला लेते हैं रसगुल्ला बनता है, तो वो तो बड़ा टेस्टी होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं तो आप पूछना क्या चाहते हो। बोला वो कहता है राधा कृष्ण बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों मिलके जब चैतन्य महाप्रभु बनते हैं तो बड़ा मधुर हो जाता है, तो कौन इसमें से पहले है। प्रभुपाद ने कहा सीधा ही, पहले दूध और चीनी है तब तो रसगुल्ला बना, तो इसका मतलब राधा कृष्ण तो पहले है ही। बोला ये बात तो ठीक है, फिर इनमें से महान कौन है। अब प्रभुपाद जी थोड़ा शांत रह के फिर, जैसे यहां दीवार पे चित्र लगे हैं, वहां दीवार पे चित्र लगे हुए थे, एक चित्र को देखा भगवान श्री कृष्ण घुटने के बल राधा रानी के चरणों में बैठकर और चरण दबा के और हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांग रहे थे। प्रभुपाद ने कहा देखो राधा रानी मां बड़ी है ना कृष्ण से, कृष्ण बैठ के उसके पांव में बैठा है ना, तो राधा रानी मान हुई ना। फिर प्रभुपाद जी थोड़ा रुक के देखा दूसरे फोटो को, तो नंद बाबा के खड़ा हुए कृष्ण अपने सर के ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं नंद बाबा बड़ा है ना, कृष्ण उसके चप्पल सर के ऊपर उठा के जा रहे हैं। और फिर एकदम प्रभुपाद ने गंभीर होके कहा भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है, अर्जुन भगवान का भक्त है, रथ के ऊपर ऊपर बैठा है और भगवान नीचे घोड़े हांक रहा है, तो भगवान अपने भक्त को कितना ऊपर का स्थान दे दिया। तो आप लोग जो यहां ब्रज में जन्म लिए हो, ये कोई भाग्यशाली कोई किसी पुण्य से नहीं प्राप्त होता है, तो ये जो भक्त यहां रहने वाले ब्रज में है ये कितना दुर्लभ आपको, ये जो भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और ब्रज में जन्म लेना इतना सामान्य नहीं है, तो देवी देवता के लिए भी सुलभ नहीं है। आप कितने भाग्यशाली हो कि ब्रज में आपको ये जन्म मिला है, और ब्रज के जन्म का उद्देश्य केवल राधा कृष्ण की महिमा को पहले जन्म सार्थक करी फिर कर परोपकार, पहले अगर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए और फिर ये शिक्षा विश्व भर में पहुंचानी चाहिए। तो ये डॉक्टरों ने 2002 से देखा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, वैसे राधा रानी की प्रसन्नता से होती है, कृष्ण को कौन भक्त कृष्ण किसको अपना भक्त स्वीकार करते हैं? भगवान श्री कृष्ण, जो राधा रानी कह देती है उसको स्वीकार कर देते हैं। तो राधा रानी की कृपा के बगैर कृष्ण की कृपा नहीं मिलती। तो यहाँ राधा रानी की कृपा के क्षेत्र में, जहाँ राधा रानी की कृपा नित्य निस्दिन बरस रही है, इसलिए इसको बरसाना कहते हैं। बरसात तो अपने समय पे ऊपर आती है, लेकिन यहाँ तो राधा रानी की कृपा नित्य बरस रही है, भाग्य इसका रसपान करके आनंद कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब वो कृष्ण की प्रसन्नता जीवन का, कृष्ण की सेवा जीवन का लक्ष्य है। वो तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राधा रानी के चरणों में जाना चाहिए, और जो उनके भक्त है उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हमारा अधिकार है राधा रानी की सेवा करने का। जो उनके भक्त है, जो उनके लिए अपने जीवन में सब कुछ छोड़ के आ गए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन धान्य छोड़ दिया, जैसे हमारे छह गोस्वामी जिन्होंने इस ब्रज को पुनः, जो आज ब्रज किया गरिमा है, ये आज से 500 साल पहले मुगल शासन में तो यहाँ शिकार करने आते थे मुगल, और चोर डाकू चारों ओर इतने थे कि यात्री कोई बेचारा भयभीत होके मुश्किल से आता था। तो उस भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने छह अनुयायियों को भेजा कि ब्रज के सारे लीला स्थलों को पुनः प्रकट करो, और बड़े सुंदर भव्य मंदिरों की स्थापना करके और भक्ति के शास्त्रों का विश्व में प्रचार करने की तैयारी करो। तो ये श्रीपद रूप गोस्वामी भाई, उनके सनातन बड़े गोस्वामी, इन्होंने ये ब्रज का, साथ में और भी कई ब्रज के अंदर महात्मा आए, उन्होंने मुगल के समय में ये सारे जो ब्रज में मंदिर बने हुए वृंदावन में, गोविंद देव जी, दान राधा दामोदर, मदन मोहन, ये सब उस काल के बने हुए सारे भव्य मंदिर हैं। तो ये सब वो पुराने स्थान, यहाँ तो ये ऐसा क्षेत्र है जैसे कहते देवता सो देवलोक में कौन जो ना जाना चाहेगा, ब्रह्मलोक किसको चाहिए, ब्रह्मा जी तो यहाँ बरसाने में पर्वत बन के बैठे हुए हैं भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए, और आगे शंकर जी बरसाने में बैठे हैं, और भगवान विष्णु गोवर्धन बन के बैठे हैं। यहाँ तो तीनों देव जिसकी दुनिया पूजा करती है वो तो यहाँ भगवान के लीला का रस आस्वादन करके लिए बैठे है, और ब्रह्मा जी तो भागवत में कहते हैं कि ब्रज की सीमा के ऊपर घास बन जाऊं, आने जाने वालों के चरण की धूली लगेगी तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तो कितना ब्रज में रहने का महत्व है। तो कह रहे थे श्री प्रभुपाद जी, एक दिन श्री प्रभुपाद जी यही वृंदावन में जो अपना कृष्ण बलराम मंदिर है, इसकी भूमि गीता शराफ ने दी थी। तो गीता शराफ को एक दिन प्रभुपाद जी कह रहे थे, मैं ऊपर से भेजा गया, मेरी आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विश्व व्यापक भाषा अंग्रेजी में, हिंदी और बंगाली में आपको जाकर भागवत का प्रचार करना है, भागवत धर्म का। और फिर कहा कि अब ये काम मेरा पूरा हो गया और मैं अब वापस जा रहा हूं। और ये बात जब गीता सराफ ने बोला, मैं किसी को बोला नहीं है, लेकिन फिर देवी शक्ति माता जी बहुत समय से यहाँ रह रही है, उनसे जब कहा तो भक्तों को लगा कि प्रभुपाद जाने वाले हैं। और फिर एक ये 66 में बोला, और एक साल के अंदर अंदर फिर प्रभुपाद जी यहाँ से चले गए। तो असल में श्री प्रभुपाद जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोलोक धाम से यहाँ भेजा, और यहाँ जब आए वृंदावन में आके रहे, वानप्रस्थ लेके कारोबार छोड़ के घर छोड़ के, तो उनके गुरु महाराज ने इस वृंदावन से भी कहा कि नहीं जाओ, प्रचार करो पाश्चात्य देश में। भगवान ने तो गोलोक वृंदावन से भेजा, गुरुदेव ने इस वृंदावन से भी बाहर भेज दिया प्रचार के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी वृंदावन को अपने साथ ले गए। ऐसे प्रभुपाद जी के 100 साल शताब्दी में कुछ ब्रज के महात्मा आए थे, वो श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण के महात्म्य के आधार पर जहां भक्ति देवी कहती है अगर भारत वर्ष के लोग मेरा आदर स्वीकार करके मुझे मेरा पालन नहीं करेंगे, गमिष्यामी, मैं चली जाऊंगी। और उन महात्माओं का ये निर्णय है कि भक्ति देवी ब्रज से इस महात्मा श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणार भक्ति वेदांत स्वामी के हृदय में बैठकर और पाश्चात्य देश चली गई। तो भक्ति का प्रचार पूरे विश्व, प्रभुपाद जी वृंदावन को साथ ले गए और पूरे विश्व को वृंदावन का परिचय कराया। आज से 40 साल पुराने लोगों से पूछेंगे तो ब्रज में उस वक्त कोई इतनी आना जाना लोगों का था नहीं। जब से प्रभुपाद जी के इस मंदिर के और जहां ये मंदिर कृष्ण बलराम अपना बना है, यहां दोपहर को भी कोई साधु नहीं आता था। ये जंगल ऐसा था कि यहां एक बैल होता था, उसका नाम था साधु मार बैल। साधु भी आता था उसको मार देता था। दोपहर में कोई रिक्शे वाला नहीं आता था। जब से और प्रभुपाद जी के पिताजी रोज 5-6 साधुओं को घर लाके भोजन करा के उनको कहते थे आप राधा रानी को प्रार्थना करो मेरे बेटे के ऊपर कृपा करे और राधा रानी का भक्त बने। ये प्रभुपाद जी पिता के पिता रोज अपने घर में रोज 4-5 साधु को मिलते थे, लाके भोजन करा के कहते थे मेरे बच्चे के ऊपर राधा रानी कृपा करे, उसका भक्त बने। तो ये वे बचपन में माता पिता जब साधु सेवा करते हैं, आशीर्वाद बांटते हैं, तो क्या कहते हैं राधा रानी का भक्त बने। ये हुआ कितना बड़ा वैष्णव उनका भाव पिताजी का था। तो राधा रानी ये ब्रज को हृदय में धारण करके ब्रज की भक्ति को भाव को श्री प्रभुपाद विश्व पूरे को परिचय कराया। अभी तो पूरे संसार से लोग आ ही रहे हैं, लेकिन भूमिका जो निभाई, पाश्चात्य देश में पहला मंदिर स्थापित किया। और आश्चर्य ये लगेगा कि भारत समृद्ध देश है, कभी भारत गरीब नहीं था। अगर गरीब होता तो अंग्रेज यहां धक्के खाने क्यों आया, मुगल यहां क्यों आया, तुर्क यहां क्यों आया, वो भूखे थे यहां आए। हम कभी कहीं बाहर गए, प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं भारत कभी अपनी सीमा से बाहर कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं गए, ये लोग यहां लेने के लिए आए, हम कभी यहां से बाहर नहीं गए हैं। ये समृद्धिशाली अपने आप में परिपूर्ण। और 1800 में जब यहां अंग्रेज ने अच्छी तरह से सर्वे किया, जांच किया, तो देखा कि भारत में कोई भिखारी नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, गुरुकुल में सबको मुफ्त की सेवा, निःशुल्क पढ़ाई और 18-18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। राजा महाराजा रजवाड़े और बड़े बड़े धनी सेठ स्कूल में गुरुजी ब्राह्मण गुरु पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते थे, कोई पैसा नहीं लिया जाता था। तब अंग्रेजों ने सोचा कि इनकी ये पढ़ाई रही, इनकी ये विद्या गुरुकुल वाली रही, तो फिर हम भारत के ऊपर शासन नहीं कर सकते, इनको नौकर नहीं बना सकते। तो लॉर्ड मेकाले ने पहले सरकार को लिखा कि ये भारतीय पढ़ाई की पद्धति खत्म की जाए, जो इनको पैसे देते हैं उनको अवैध बोल दो, और ये जो गए महाराज मुफ्त में पढ़ा रहे हैं इनको डरा धमका के यहां से भगाओ। और थोड़े समय के बाद मेकाले ने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी थी कि जैसे किसान खेत के अंदर बीज डालने से पहले सब झाड़ियां निकाल देता है, सफाई कर देता है, ऐसे हमने भारत की जो विद्या की पद्धति थी उसको जड़ से निकाल दिया है, और अब हम कॉन्वेंट हमारी अंग्रेजी भाषा का बीज बो रहे हैं, और अब से जो पैदा होंगे देखने में भले भारतीय हो लेकिन दिमाग उनका अंग्रेजी होगा, और वो हमारे तलवे चाटते रहेंगे। और ये बहुत बड़ा अन्याय भारत के साथ जो किया है ब्रिटिश शासन ने, वो हमारी विद्या पद्धति का सत्यानाश किया। और आपको आश्चर्य होगा श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ से 66 में इस्कॉन की स्थापना की और 67 में पहले जल्दी एक साल में बोला गुरुकुल खोलो, पहले यहाँ गुरुकुल अंग्रेज ने बंदर की और प्रभुपाद ने अमेरिका में गुरुकुल खोला जाकर, कि ये पढ़ाई की पद्धति जब तक नहीं आएगी, जब तक हमारे अपने पहरवास के में हमारे गौरव नहीं होगा, हमारी धोती के ऊपर चोटी के ऊपर हमारे को गौरव नहीं होगा। भाई आर्मी वाला जब अपनी ड्रेस में होता है तो उसको बहुत बड़ी बल आ जाता है। तो ये हम पाश्चात्य जब बाहर के देश में प्रचार करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि ये धोती कोई भारत की ड्रेस है, ये तो गौलोक की ड्रेस है, देवलोक की ड्रेस है। वहां देखो आपके हमारे जितने भी चित्र देवी देवता भगवान भक्तों के सबका धोती में है कि नहीं है। तो ये कोई ये संसारी ड्रेस नहीं है, ये त्याग और वैराग्य की ड्रेस है। अरे धोती एक कपड़ा है, पहनने वाला ना जेब है अंदर, न कुछ छुपाने के लिए है, बहुत अच्छा। दुनिया से जाना है खाली हाथ, उसका ये हमारे को पहले दिन से समाचार देता है। और ये सारी माता जी की, कोई जेब नहीं होता इसमें भी, और अनंत समय में जो कफन का कपड़ा देते हैं उसमें भी कोई जेब नहीं होता है। तो ये तो भारतीय संस्कृति की महान शिक्षा है कि सेवा करो जब तक जीते रहो, भगवान की प्रसन्नता हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। राधा कृष्ण की प्रसन्नता उनके भक्तों की प्रसन्नता से। वैसे कृष्ण के अर्थ में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, कृष्ण के सारे शक्तियां, कृष्ण के भक्त, ये सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो भगवान को प्रश्न करने के लिए भगवान के भक्तों की सेवा का। वैसे आप लोग चलते किससे हैं? जनरली मैं आपसे पूछूं, भाई चलते कैसे हैं? सब लोग कैसे चलते हैं भाई? हाँ, पैरों से? नहीं, नेत्रों से चलते हैं। अगर आंखें नहीं हुई तो कैसे चलेगा? इसलिए नेता बोलते हैं, जो रास्ता बताने वाला है उसको क्या बोलते हैं? नेता। नेता का मतलब नेत्र, जो देश का नेता होता है, नेत्र होता है, उसको नेता कहते हैं। हम आंख से पहले देखते हैं फिर पांव उठाते हैं, पांव से नहीं चलते हैं, आंख से चलते हैं, पांव से नहीं चलते हैं, असल में आंख से चलते हैं। नेता नेत्र हमको चलाते हैं, नेत्र नहीं होंगे तो नहीं चल पाएंगे, पांव हो नेत्र नहीं हो तो नहीं चल पाएंगे, कोई सहारा चाहिए। तो ये नेत्र चिकित्सा का जो कार्य है, ये असल में किसी को पराधीनता से बचाने के लिए है, ताकि किसी के ऊपर अधीन न हो जाए, अपने चलने फिरने का कार्य करे। और उससे ज्यादा भी शास्त्र पढ़ना है, भगवान का दर्शन करना है, आंख होगी तब ना, आंख मिली ही भगवान का दर्शन करने के लिए। वैसे तो सारी दुनिया को मोतियाबिंद है, उसका ऑपरेशन तो प्रभुपाद जी ने बड़े स्तर के ऊपर किया। वो तो मोतियाबिंद ये है कि भगवान को जानते ही नहीं है लोग, सामने खड़ा हो तो भी नहीं पहचानते। लेकिन यहाँ तो सचपच जो भक्त हैं भगवान का दर्शन, ऊपर जाके महल में लालड़ी का दर्शन करते हैं, मोतिया आ गया नहीं देख सकते हैं, तो मोतिया निकाल दो तो उनको दर्शन हो जाएगा, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ तो रहने वालों का उद्देश्य ये है कि भगवान का दर्शन करना है, भगवान के भक्तों का दर्शन करना है, भगवान की सेवा करनी है। तो इस सेवा के लिए ये जो कार्य किया जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के अंदर आप लोग सब जो सेवा कर रहे हैं, ये सेवा के कार्य को ऐसे एक संकल्प कर लो कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं इससे भगवान राधा कृष्ण की प्रसन्नता हमारा उद्देश्य है। ये जो कार्य कर रहे हैं इससे पीछे हमारा उद्देश्य है भगवान प्रसन्न हो जाए इस कार्य से। ये जो मुख्य उद्देश्य है, इसको पहले काम इसलिए नहीं करना है कि कुछ पैसे मिल रहे हैं, काम इसलिए करना है कि भगवान की प्रसन्नता है। और जब काम कोई भी करता है तो भगवान उसको दो टाइम का भोजन तो दे ही देता है, तो भोजन के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है, सेवा के भाव से काम करना चाहिए। अब एक बात कह के मेरे ख्याल में वाणी को विराम देंगे। दो प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक प्रकार के लोग की भावना होती है कि भोग करना है, और दूसरे प्रकार के लोगों की भावना होती है कि सेवा करना है। जो भोग की भावना रखते हैं वो तो हो गए भगवान के प्रतिद्वंदी। क्यों? क्योंकि भगवान तो कहते हैं भोक्ता मैं हूं, भोक्ता रमयज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कहते हैं भोक्ता मैं हूं। अगर कोई और कहे मैं भोक्ता हूं, ये तो भगवान का प्रतिद्वंदी हो गया ना। कौन कहता है अहम भोगी, मैं भोगी हूं? कौन कहता है? असुरी प्रवृत्ति का लोग, जिसकी असुरी प्रवृत्ति है वो कहता है मैं भोगी हूं। और दूसरे कहते हैं मैं सेवक हूं। यह सेवक हमारा स्वरूप है, इसको भूल कर भोगी बनना हमारे दुख का कारण है। दुनिया में सब लोग दुखी है, इतना धन मिल गया, इतना सुख मिल गया, फिर भी दुखी क्यों है? क्योंकि भोग की भावना है। भोग की भावना से कुछ भी मिलने से कोई कभी सुखी नहीं हो सकता, और सेवा की भावना हो कुछ भी नहीं हो तब भी सुखी रह सकता है। आपने सुदामा को देखा, भगवान की सेवा का भाव था, कृष्ण की सेवा, मांगा नहीं कृष्ण से। अगर मांगा होता तो सुदामे का नाम भागवत में नहीं होता, कृष्ण को मांगना पड़ गया। सुदामा ऐसा भक्त, कृष्ण का मेरे लिए क्या लाओ, मांगना कृष्ण को पड़ गया, सुदामे ने नहीं मांगा। सुदामा मांगने वाला नहीं था, इसको बोलते हैं अयाचक ब्राह्मण, जो याचना नहीं करता है। जो याचना नहीं करता उसके लिए भगवान चिंतित हो जाता है कि इसका मुझे देखभाल करना है। जो मांगता है भगवान कहता है अपने आप मांग रहा है, मैं काहे के लिए परेशानी उठाऊं इसकी। लेकिन जो नहीं मांगता है भगवान चिंतित हो गए। चिंतित क्या हो गए, मेरे लिए क्या लाए, बोला कुछ तो इससे लेना पड़ेगा तब देना पड़ेगा ना। तो असल में सेवा का भाव जीवन में आ जाए। और सेवा कब आती है, जब प्रेम होता है, बगैर प्रेम के सेवा नहीं है। असल में प्रेम से सेवा होती है और सेवा करने से प्रेम होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए। जीवन का लक्ष्य है असल में भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, उसके लिए करनी है सेवा। कभी भी भोग की भावना मन में आएगी तो संसार में कभी सुख नहीं मिलेगा, किसी को आज तक मिला नहीं है। राजा महाराजा भोग के नाम भोग भोग करते खुद ही भुगत गए, समाप्त हो गए, नाम तक नहीं कोई जानता है। लेकिन सेवा करने वालों का नाम आज भी संसार में सब संसार जान रहा है। तो भगवान से प्रेम करना है तो भगवान के प्रसन्नता के लिए भगवान के भक्तों की सेवा करनी। तो ये नेत्र चिकित्सालय का कार्य 6 साल से चल रहा है। आप लोग इसमें जो कार्यरत हैं उनका हृदय में भाव ऐसा होना चाहिए कि ये सेवा हमारी भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, उनके भक्तों की, भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए। अब ये एक मेरा प्रश्न है, बेचारे यहाँ आते हैं वो तो दुखी होते हैं ना भाई, जो नहीं देखता है दुखी हो गया, रोगी है तो दुखी हो गया ना, तो दुखी यहाँ आता है तो हम क्या करते हैं? बोला हम उसको सुख देते हैं। अरे हम उसको सुख देते हैं, हमारे पास सुख होगा तब देंगे ना। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि आप सब यहाँ हैं, क्या आप सुखी हैं? अगर आप सुखी होंगे तो उसको सुखी सुखी बनाएंगे, अगर आप ही सुखी नहीं है तो वो कहाँ से सुखी होगा? तो पहले अपने आप को सुखी करने का साधन तो सीखना चाहिए। हमने कई बार पाश्चात्य देश में जाके जहाँ लोगों को यहाँ तक पता भी नहीं है कि कृष्ण क्या, राम क्या, एक मिनट उनको बोलते हैं कि हाथ जोड़ के बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और एक मिनट के बाद पूछते हैं भाई बताओ आपका अनुभव क्या है। आज तक 99% लोगों ने, 99% लोगों ने कहा हमको शांति मिली, हमको आनंद मिला, हमको हल्कापन महसूस हुआ, हमारी चिंता मुक्त हो गई। तो हम उनसे पूछते हैं भाई तुम सुखी हो गए, तुम्हें शांति मिल गई, चिंता मुक्त हो गए एक मिनट से अंदर, तो इसका मतलब सुख शांति आपके अंदर है, बाहर तो नहीं है ना। अभी आप बाहर सुख को ढूंढ रहे हो कि धन में सुख है, कि बिल्डिंग में सुख है, कि गाड़ी में सुख है, कि स्त्री में सुख है, कि बच्चों में सुख है, बाहर ढूंढ रहे हो ना। हमने पूछा सब लोग कर क्या रहे हो, बोला पैसा कमाने काहे के लिए कमा रहे हो, सुखी होने के लिए। क्यों भाई सुखी हो गए क्या? नहीं हुए। तो इसका अर्थ क्या है कि आप सुखी तो होना चाहते हो लेकिन सुखी होना तो आपको आ नहीं रहा है। सुख आपके अंदर एक मिनट में आपने कहा सुखी हो गए, और आप इतनी सारे साल गुजर गए अभी तक सुखी तो हुए नहीं। तो ये सुखी होना, पहले स्वयं सुखी होंगे तब दूसरे को सुखी बनाएंगे ना। एक बार एक बच्चे ने सिक्का अठानी का निकल लिया, 50 पैसे का सिक्का निकल लिया, तो बाप पिताजी माताजी बड़े चिंतित हुए, बच्चे को गोद में उठाया, भागे बाहर रोड पे, हाथ दे रहे गाड़ियों को, भाई ले चलो अस्पताल जाना है, बच्चे को तकलीफ, बड़ी गाड़ी मोटी आके रुकी।
उसने गाड़ी से बाहर निकल के बोला क्या बात है, बोला अस्पताल पहुंचा तो क्या हुआ, तो बच्चे ने सिक्का निकल लिया है 50 पैसे का, बोला लाओ बच्चा इधर, बच्चे को पांव से पकड़ के उल्टा और गर्दन के पीछे मुक्का मारा पीछे और बाहर 50 पैसा गिरा। बाप बड़ा खुश हो गया, बोला कौन से डॉक्टर है, बड़े अच्छे हो, अस्पताल भी नहीं जाना पड़ा, खर्चा भी नहीं करना पड़ा, यही बच्चे का आपने तो दुख निवारण कर दिया। वो बोलता है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, पैसा तेरे पेट में हो तो भी निकाल सकता हूँ, तुम कहीं भी छुपा के रखो तो तुम्हारा पैसा जहाँ भी है मुझे पता है। ऐसे श्रीला प्रभुपाद को मालूम था कि सुख इनके अंदर है और हरे कृष्ण मंत्र जपने से ये सुखी हो जाएंगे, तो ये सुख निकालने का साधन दुनिया को बता दिया कि ये पड़ा है अंदर सुख, किसी को आता नहीं है निकालने। वो सारे ही हिप्पी होके सुख लेके लिए कोई नचा कर रहे थे, कोई लड़कियों के साथ घूम रहे थे, लेकिन सारे ही परेशान थे। प्रभुपाद ने कहा क्या चाहिए, बोला सुखी, बोला आपको सुखी बनाता हूँ। अरे सुख का सागर तो है भगवान, जो जो सुखी होगा उसके पास जाओगे तब सुखी होगे ना। सर्दी बहुत लग रही है, जहाँ आग जलोगे आग के पास जाओगे तो सर्दी चली जाएगी, अगर बहुत धूप लग रही है पेड़ के नीचे जाओगे तो छाया मिल जाएगी। ऐसे भगवान तो है ही सुख सागर, वो तो आनंदमय है, उसके पास जाएंगे तो हमको भी सुख मिलेगा। और इसमें भी हरे कृष्ण मंत्र में हरे तो राधा रानी को संबोधन है, वही जब कृपा करेगी तभी कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, जब उसकी सेवा होगी तो अपने अंदर से सुख जो है वो प्रकट हो जाएगा। अब दुनिया में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सब मधु की बोतल उनके पास पड़ी है लेकिन बाहर से चाट रहे हैं, बच्चे को दे दो ऊपर ढकना खोलने आता नहीं है, बाहर से चाटेगा है तो मधु लेकिन मीठी तो नहीं लगेगी ना, ढकना खोलेगा फिर पिएगा तो मीठी लगेगी। तो असल में सारे दुनिया संसार के अंदर सुख भोगने की भावना तो है लेकिन सुख है कहाँ पता नहीं लग रहा है। एक बार एक हीरे के व्यापारी ने बहुत बड़े हीरे के दुकान से 2 लाख रुपए के हीरे लिए, तो ऐसे बड़े व्यापारियों के बाहर बदमाश भी खड़े हुए देखते रहते क्या हो रहा है। उसने देख लिया कि इसने 2.5 लाख के हीरे लिए, उसके 7 साल चला, वो ट्रेन में गया तो उसकी एरिया खत्म हो गई ट्रेन पे, उस बदमाश का अपना एरिया उतना ही था लेकिन ट्रेन का बदमाश कौन है वो उनको जानता है, वो दूसरे बदमाश को बोला इसके पास 2.5 लाख का हीरा है, 10,000 में बेचता हूँ पार्टी, तुम्हारे को 10,000 दो। उसने 10,000 दे दिया, क्योंकि ऐसे काम वाले बेईमानी नहीं करते, काम बेईमानी कह लगे उसके अंदर बेईमानी नहीं है, इतनी ईमानदारी, चोरी के काम में बड़े ईमानदार होते। अब इसने 10,000 तो दे दिया, उसी डब्बे में दूसरी सीट पे जाके सो गया चोर ये जो बदमाश था वो। तो जो हीरे का व्यापारी था वो भी बाथरूम में गया, ये बाथरूम में गया वो गया, स्टेशन से निकले, रात को सारी रात उस बदमाश ने उसकी बैग खोली, उसका सब सामान ढूंढा, कपड़ा जेब सब कुछ ढूंढा, कुछ हीरा नहीं मिला। सुबह हो गई, वो स्वयं गया वॉशरूम में बाथरूम में गया, फिर ये व्यापारी गया वापस आके बैठ गया। अब उसने सच बोल दिया, बोला देखो मैं हूँ चोर हूँ, आपको बोलता हूँ बेईमान, हम तो उचागर हैं, लोगों को लूटते हैं, यही हमारा काम है और हमारे धंधे में बेईमानी नहीं है, आपने 2.5 लाख के हीरे लिए ये सच है? बोला हाँ। बोला यही तो मेरे को कहा था उसने, 10,000 में मैंने आपको खरीदा था, सारी रात मैंने आपकी सब चीजें ढूंढी, हीरा गया कहाँ? उसने उसी जहां सोया था ना वो चोर, उसके तकिए को उठाया, बोला तेरा तकिया ऊपर करो, ऊपर किया, बोला ये पड़ा है, तुमने अपना तकिया नहीं ढूंढा, मेरे सामान में ढूंढ रहे थे तो मैंने तो रात को वहां रख दिया, क्योंकि तुम अपना तो ढूंढेगा नहीं, मेरा ही ढूंढेगा ना, मैं सुबह उठ के मैं उठा लूंगा तुम्हारे को, मेरे को चिंता तो है नहीं। तो असल में क्या है, भगवान छुप के हमारे दिल में बैठ गए, वो सुख के सागर है और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हीरा दूसरे के अंदर ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर ही पड़ा है, वो समझ में आए तब उसको हम ढूंढे ना। तो जिंदगी भर ऐसे गुजर जाती है, तो ये बड़े भाग्य से दुर्लभ मानव जन्म मिला और वो भी ब्रज में मिला है, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। वैसे तो भगवान के जाते ही ब्रज के सब लोग भगवान के संग चले गए, फिर वज्रनाभ ने इस ब्रज को पुनः सांडिल्य ऋषि के प्रेरणा से बरसाया और भगवान श्री कृष्ण की पहली भागवत कथा उद्धव कुंड पे कुसुम सरोवर पे उद्धव जी ने भागवत कथा पहली की, उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और फिर वज्रनाभ को परीक्षित महाराज ने बहुत से लोग भेजे यहाँ बसाया और ना वहाँ लिखा है वृद्धसानुपुर गोवर्धन दीप तक ये पूरा क्षेत्र किस तरीके से बसाया जाए। तो पहली बार भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद ब्रज को वज्रनाभ ने बसाया और फिर जब लुप्त हो गया तो छह गोस्वामी ने प्रकट किया और आज विश्व भर में इस ब्रज की गरिमा महिमा श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अब ऐसी प्रतिष्ठा है कि विश्व में कोई ऐसा दुनिया में जगह नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जिनको मालूम नहीं है कि राधा कृष्ण कौन है, वृंदावन वृंदावन कहाँ है, गोवर्धन बरसाना, ये नाम अब पूरी दुनिया के अंदर परिचित हो गए। तो ये कार्य श्रील प्रभुपाद जी का अद्वितीय है और 10-11 साल में इतनी बड़ी उम्र में 70 साल के बाद ऐसा कार्य करना, इतने पुस्तक विश्व के सब भाषाओं में उपलब्ध करवाना, ये बहुत बड़ा एक अद्वितीय कार्य है और उन्हीं प्रभुपाद जी के भाव को के ब्रज में हमारे को सेवा करनी है, ब्रज सेवा के लिए है। तो उस भाव को देखते हुए यहाँ भक्तों ने यहाँ डॉक्टरों ने जो कार्य शुरू किया है, ये कार्य 6 साल से सफलता से चल रहा है। अभी भी आप बाहर आंखों के जो फ्री ऑपरेशन का जो निःशुल्क ऑपरेशन का कार्य 2-3 महीने चलेगा। पहले तो आके यहाँ धर्मशाला लेनी पड़ती थी, अब फिर देखा कि उसमें बहुत समस्या हो रही है तो अब यहीं रह के उनकी देखभाल हो रही है। आगे और भी काम बहुत बढ़ेंगे, आप सब लोगों के मन में कृष्ण भावना ऐसे जागृत हो जाए, सेवा का भाव हो जाए तो अन्य और भी कार्य बढ़ा के और सेवा की जा सकती है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की, भक्ति वेदांत स्वामी।